ओम शांति। आज मार्गदर्शन में हमारे बीच व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी, जिनके अनुभव और ज्ञान का लाभ हमारा संपूर्ण देश पिछले कई दशकों से उठा रहा है और न जाने कितनी भटकती हुई जिंदगियों ने इनके संवाद से दिशा और दृष्टि प्राप्त करते हुए लाभान्वित होने की दिशा में पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया है। और आज वे लोग मन पर काबू पाते हुए, आत्मा को साधते हुए, परमात्मा को जानते समझते हुए उनके निर्देश से अपने जीवन को सार्थक और सकारात्मकता के लिए निरंतर समर्पित करते हुए घर, परिवेश, राष्ट्र और संस्कृति का विकास कर रहे हैं। दीदी, व्यापारियों की अनिवार्यता हमारे लिए कितनी है कहने की जरूरत नहीं। आदिकाल से इनकी अनिवार्यता महसूस की गई और विभिन्न वस्तुओं की जब जरूरत समाज को पड़ती है तो हम कभी हाट के माध्यम से, कभी बाजार में सजी दुकानों के माध्यम से, कभी बड़े प्रतिष्ठानों के माध्यम से अपनी जरूरत की चीजों की पूर्ति आपूर्ति करते कराते रहे हैं। व्यापारियों का होना हमारे विकास के लिए, हमारी अनिवार्यता के लिए और साथ ही साथ हमारे घर के तमाम संदर्भों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मगर ये व्यापारी लोग भी मनुष्य हैं, इनका भी निजी जीवन है, इनका भी सामाजिक जीवन है, इनके भी दुख हैं, इनकी भी पीड़ा है, इनकी भी समस्याएं हैं और समस्याओं से जूझना पड़ता है घर से बाहर तक। कभी निजी समस्या, कभी सामाजिक समस्या, कभी आर्थिक समस्या, कभी राजनीतिक समस्या, कभी सांस्कृतिक समस्या, और उससे ऊपर जब उठते हैं तो वैश्विक समस्याएं भी इन्हें परेशान करती हैं। विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए, अपने अर्थ को नियंत्रित करते हुए, अपने व्यापार के लिए संलग्न रहने वाले, समर्पित रहने वाले ये लोग जब समस्याओं से घिर जाते हैं तो ऐसे में इन्हें भी समाधान के लिए कोई टावर लाइट चाहिए, इन्हें भी रोशनी चाहिए, इन्हें भी बोध चाहिए, इन्हें भी एक सूझबूझ और दिशा चाहिए। अर्थात इनका मन, इनकी आत्मा का उन्नयन कैसे हो और अपने आप को संतुलित रखते हुए अपने व्यापार के समग्र विकास में कैसे ये समर्पित रहें, इन तमाम संदर्भों को समेटकर इनका प्रश्न है। और इनके प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तब तो देंगे ही, मगर उससे पहले व्यापार और समाज में इनकी अनिवार्यता और इनकी स्थिति, मन स्थिति, परिस्थिति, इन तमाम संदर्भों को समेटकर सबसे पहले मार्गदर्शन में आपका संवाद, आपका विचार, फिर इनके प्रश्नों की ओर।
आज आप सभी व्यापारी वर्ग के भाई इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। व्यापार उद्योग एक ऐसा शुभ कार्य है जिसे करने वाले को भी आनंद आता है और लोग भी उसे लाभान्वित होते हैं। नौकरी करने वाले का समय निश्चित होता है, कितने बजे से कितने बजे तक उसको काम करना है, लेकिन व्यापारियों का समय निश्चित नहीं होता। वो जब अपने कार्य में लग जाते हैं तो लगे ही रहते हैं। इस प्रकार से निरंतर अपने कार्य में प्रगति करते हुए, सफलता पाते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं। हमें एक बात ध्यान में जरूर रखनी है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब अपने परछाई के पीछे पीछे दौड़ता है, वो परछाई आगे ही आगे जाती है, उसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब उसका मुख सूर्य की ओर हो जाता है, परछाई उसका पीछा करती है। इसी प्रकार से और धन उपार्जन के लिए और अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए दौड़ लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इतनी व्यस्तता है, इतने कार्य हैं, इतना कार्य का भार है, इतनी जिम्मेवारी है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हम थोड़ा सुप्रीम पावर का भी सहयोग लें, अपना मुंह उनकी तरफ करें, आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो ऐसा महसूस होगा कि हमारे साधन धन हमारे पीछे पीछे आ रहा है। सब कुछ करते हुए भी लाइट हैं, हल्के हैं, तनाव मुक्त हैं, क्योंकि जिस गद्दी पर आप बैठते हैं पहले जरूर आप भगवान को याद करते हैं, पहले वो विराजे फिर हम बैठे, उसी का है ये जरूर याद करते हैं। दुकान खोलते पूजा करना, ईश्वर के अर्पण करना, उसका शेयर निकालना, ये कार्य व्यापारी वर्ग ही करता है, पुण्य के कार्य भी करते हैं। इसलिए हमें ये याद रखना है कि व्यापार भी हमारा ऐसा हो जिससे हमें भी लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। आजकल ज्यादा कमाई करने के लिए लोग खाद्य सामग्री में भी मिलावट करने लग गए, ऐसी मिलावट करते हैं जिससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं, दवाइयों में भी मिलावट, खाद्य पदार्थों में भी मिलावट, ऐसी ऐसी वस्तुओं के अंदर मिलावट करने का कार्य जो व्यापार की ओर से हो रहा है ज्यादा प्रॉफिट के लिए, इसके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि एक बात याद रखें, अगर हमें ज्यादा फायदा लेना है तो जिसको सामान दे रहे हैं उसको भी नुकसान ना हो, वो भी फायदे में रहे, ये लक्ष्य जरूर रहे, उसे भी नुकसान ना हो। तो आज ये जो इतने सोशल वर्कर हैं, आज व्यापारी समाज कितनी सोशल सेवा करते हैं, कहीं सुनेंगे कंबल बांट रहे हैं, कभी सुनेंगे साड़ियां बांट रहे हैं, कभी सुनेंगे कुछ स्वेटर बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, भोज करा रहे हैं, एक तरफ समाज की सेवा करते हैं और एक तरफ मिलावट के द्वारा उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि व्यापार में सदाचार हो, व्यापार भी सिद्धांत पूर्ण हो, उसके अंदर भी शुद्धता हो, उसके अंदर भी एक सात्विकता हो, केवल धन उपार्जन ही नहीं समाज कल्याण का कार्य इस प्रकार करें कि हमारी जो सामग्री है जिसको हम तैयार कर रहे हैं इसके द्वारा सबका हित हो रहा है, सबको लाभ पहुंच रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ये भावना समाज कल्याण के लिए आवश्यक है। तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण होता है, अगर ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो हम समझते हैं कि व्यापार करने वाले जो आज समाज सेवा का कार्य करते हैं ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, मिलावट नहीं करना ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। इसलिए अगर ऐसी भावनाएं अपने मन में रखें, परमात्मा को भी अपने साथ रखें, तो हम समझते हैं तनाव मुक्त होकर व्यापार किया जा सकता है।
व्यापार में भी सात्विकता, शुद्धता, नैतिकता और एक आचरण नितांत अनिवार्य है, और इस संकल्प के साथ अगर हम नफा की बात करते हैं तो हमारा नफा हो लेकिन सामने वाले को जो हमारे व्यापार के साथ जुड़ता है या हमारे व्यापार का जो क्रय करता है उसका भी नुकसान ना हो। नफा नुकसान का खेल तो चलता ही रहता है, व्यापार में भी चलता है। नफा से हम प्रसन्न जहां होते हैं अहंकार ग्रसित भी हो सकते हैं, वहीं नुकसान से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारे बीच आज संवाद करने के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़े हुए श्री राजीव लोचन गुप्ता जी हैं, और ऐसे में आपकी समस्या क्या है, निजी जीवन, व्यापारिक जीवन की समस्या, आर्थिक समस्या और जो भी समस्या हो, जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, उसके समाधान के लिए परमादरणीय दीदी यहाँ उपस्थित हैं, राजीव लोचन गुप्ता जी।
दीदी से एक प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि सारी ज्ञान हम पाए हैं और हम जानते हैं, रोज अनुभव करते हैं, और उस क्या खराब है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब हम जानते हैं, उसके बावजूद सारा ज्ञान टीका का धरा रह जाता है और हम फिर उसी तरह से जैसा करना रहता है वही होता है। इसके लिए कुछ प्रेरणा दीदी से चाहते हैं कि कुछ इस पर कहें।
जानने को तो मनुष्य बहुत कुछ जानता है, ठीक है, मानता भी है, जानता भी है, लेकिन आचरण में नहीं आता। इसके लिए एक पावर की जरूरत है और समझ का भी बड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। मानते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अंतर में विश्वास यही है कि नहीं, मुझे ऐसा करने से ही फायदा होगा। इसलिए वो केवल इंफॉर्मेशन मात्र है, एक जानकारी मात्र है, जिसको कहते हैं ज्ञान, समझ, जो बुद्धि को उस कार्य की ओर प्रवृत्त कर दे, वो पावर चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आध्यात्मिक पावर आपके अंदर आ जाए, एक स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आ जाए, तो आप जो सोचेंगे वही करेंगे। लेकिन संस्कार पहले से बने हुए हैं, वो गलत काम करने के संस्कार बने हुए हैं, और वो संस्कार वो काम जबरदस्ती करा ही देते हैं। ज्ञान बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाता है, बुद्धि को निश्चयात्मिक बुद्धि बनाता है, बुद्धि को श्रेष्ठ बुद्धि बनाता है, पवित्र बुद्धि बनाता है। जब हमारा कर्म वही हम करते हैं जो हमारी हमारा निर्णय होता है, हमारा डिसीजन होता है, वही कर्म करते हैं। जब बुद्धि हमारी शक्तिशाली हो जाती है, वो मन को कंट्रोल कर लेती है। हमारे पास दो पावर है, एक को मन और एक को बुद्धि कहते हैं। आज का सारा संसार मन के वश हो गया है, इच्छाओं का गुलाम हो गया है और उसकी आदत बन गई है। मन के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं है, मन ने आपके ऊपर नियंत्रण कर लिया है। इसे जैसे इच्छा उत्पन्न होती है उसके वश हो जाते हैं। अब चाहिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, बुद्धि में ज्ञान भी हो, अनुभव भी हो, और जब बुद्धि मन को कंट्रोल करती है तब आप सही कार्य कर सकेंगे, और सही कार्य करने से संस्कार श्रेष्ठ हो जाएंगे। कि जैसे संस्कार बन जाएंगे वैसे ही आप कर्म करेंगे, संस्कारों के अनुसार ही विचार उत्पन्न होते हैं और विचार के अनुसार मनुष्य कर्म करता है, कर्म से संस्कार बन जाता है। इसलिए ये राजयोग की शक्ति, जो राजयोग की शक्ति हमें प्राप्त होती है तो हम अपने आप के ऊपर राज कर सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। राजयोग का मतलब यही है, स्वयं पर राज्य करने की शक्ति। आज स्वयं पर राज्य नहीं है, जो नहीं देखना चाहते हैं वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहते वो सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। हर जगह परवश है, कहते चाहते नहीं है पर होता यही है। इसलिए स्वयं को पहचानना, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना, शक्तिशाली बनाना, फिर महसूस करेंगे कि हम अपने बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रण करते हुए कर्म कर रहे हैं। तो मन को नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा, मन तो एक घोड़े के समान है, मैं उस पर सवार हूं, बुद्धि इसकी लगाम है जो मेरे हाथ में है। और आज की स्थिति क्या है, मन रूपी घोड़े पर मैं सवार हूं लेकिन लगाम हाथ से छूटी हुई है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं गिरा देता है, ठोकर लगती है, चोट लगती है। इसलिए मन रूपी घोड़ा तो दौड़ता रहेगा, उसको नहीं पता है मुझे कहां जाना है। घोड़े को पता होता है मुझे कहां जाना है, घोड़े पर जो सवार है उसे पता है मुझे कहां ले जाना है घोड़े को। तो मन एक घोड़ा है, वो नहीं जानता उसको क्या करना है, मैं उस पर सवार हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा मन है तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना। बुद्धि लगाम है, मेरे हाथ में है, मन भी मेरे कंट्रोल में और बुद्धि भी मेरे कंट्रोल में, उसके बाद जो हम कर्म करते हैं हर कर्म श्रेष्ठ होगा, हर कर्म पुण्य कर्म होगा, हर कर्म सत्य कर्म होगा, पवित्र कर्म होगा, और उससे अपने को तो फायदा होगा ही होगा, औरों को भी फायदा होगा।
शैक्षणिक कार्य व्यापार से जुड़े हुए हैं एक वरिष्ठ शिक्षक, जिन्होंने कई कई पीढ़ियों को शिक्षित करने का काम किया है, लेकिन उनकी भी अपनी समस्या है, शिक्षा से इतर भी समस्या हो सकती है।
मैं भरत उपाध्याय, जीवन यापन के सारे साधन इस वैज्ञानिक एवं भौतिक युग में उपलब्ध है। कई धार्मिक यात्राओं के करने के बाद भी उसके अंतःकरण में शांति नहीं आती, असंतोष से ग्रसित उसका मन इतर तितर बौवाता रहता है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो कौन सा मार्ग है कि जीवन यापन के सभी साधनों से युक्त मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो।
आज साधनों की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, वैभवों की कमी नहीं, सब कुछ प्राप्त है, भक्ति भी पूरी करता है मानव, उसकी भी कमी नहीं, लेकिन साधना की कमी है। साधन है, साधना नहीं है, इसलिए साधना की जरूरत है। किसको साधना है? पहले जानना है मैं कौन। आज मनुष्य अपने आप को जानता ही नहीं है, अपने आप को पंच तत्वों का भौतिक शरीर मानकर चल रहा है। इसके खाने पीने रहने, अच्छा वस्त्र पहनने, अच्छा भवन बनाने के साधनों में जुट गया है, लेकिन शरीर को शांति नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मैं कौन? मैं जो शरीर का संचालन करने वाला हूँ, इस शरीर का प्रयोग करने वाला हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ जिसे आत्मा कहते हैं। जब तक आत्म अनुभूति नहीं होगी, शांति कैसे प्राप्त होगी? आत्मा का धर्म है शांति, आत्मा का गुण है शांति, आत्मा का कर्तव्य है शांति देना। इसलिए राजयोग की जो पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है, वो सबसे पहला पाठ यही है, अपने आप को जाने, मैं कौन, मेरा कौन, मैं अमर हूँ और मेरा संबंध उस अमरनाथ के साथ है। उनसे जो प्राप्ति होती है वो अमर होती है, अल्पकाल की नहीं होती। इसलिए अगर राजयोग के द्वारा राजपद की प्राप्ति, यहाँ स्वयं पर राज्य, भविष्य में सर्व के दिलों पर राज्य, ये राज्य भाग्य, दो शब्द में सब कुछ प्राप्तियां हैं, सारे साधन हैं, सारे वैभव हैं, सब कुछ उसमें आ जाता है, लेकिन स्वयं पर राज्य करने की शक्ति स्वयं कौन है? जब तक नहीं जानेंगे तो राज्य कैसे करेंगे? राज्य करना है शरीर पर, ये शरीर मेरी प्रजा है और मैं राजा हूँ, मेरा इसके ऊपर नियंत्रण चाहिए, इसको सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। और उस जिम्मेवारी का पालन हम नहीं कर रहे, हम इन कर्म इंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं अगर राजयोग को जाने, अभ्यास करें, उसके द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न बन सकते हैं, मन की शांति शक्ति प्रेम सब कुछ प्राप्त हो सकता है।
जो मन वन वन भटका करता उसका क्या विश्वास? मन को साधने के लिए हमें स्वमान के पास जाने की जरूरत है और स्वयं को फिर आत्मा समझते हुए ही सब कुछ को नियंत्रित करते हुए अपने वश में कर ही लेना नहीं है बल्कि साध लेना है।
मन को शांति अब तक नहीं मिली है, इतने दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ, मन कुछ और करता है, कुछ और हो जाता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, सब कुछ मैं कुछ खुद करता हूँ, लॉस भी लगती है प्रॉफिट भी होती है, अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं मिली है।
अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले, मेरा लक्ष्य क्या है, पहले अपने को जाने, अपने आप को शांत तनाव मुक्त रखते हुए अपने पर विश्वास करते हुए, परमात्मा का विश्वास हाथ में लेकर आप कोई भी काम करेंगे, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आप कोई काम करते हैं, आपके मन में आता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। किसी व्यक्ति को कुछ कहने जाते हैं, पहले ही सोच लेते हैं वो मानेगा कि नहीं मानेगा, या कोई कार्य करने से पहले ही मन में आ जाता है जा तो रहे काम करने, होने वाला नहीं है। ये अपने अंदर जो नकारात्मक विचार है वो हमें सफलता के शिखर पर चढ़ने नहीं देते। इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा हमें अपने पर निश्चय करना सिखाती है, लक्ष्य पर निश्चय, अपने पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, और हम जिस कार्य के लिए कदम बढ़ाया है हो के रहेगा, पूर्ण विश्वास। जब पूर्ण विश्वास से कदम बढ़ाते हैं हमारे मन के संकल्प के अनुसार कार्य दिखाई देता है। इसलिए मन की उलझन, मन का डिस्टर्बेंस, इसको मिटाना है और विश्वास की शक्ति को जगाना।
परमात्मा को विश्वास में लेकर जब भी हम कोई काम करते हैं तब हमारा मन न तो शंकालु हो पाता है और न ही हम संशयग्रस्त होते हैं, हम दुविधा में भी नहीं रहते और सकारात्मकता के साथ निर्विघ्न अपना काम संपन्न करते चलते हैं। अपने बीच श्री विष्णु कुमार अग्रवाल जी हैं और विष्णु कुमार अग्रवाल जी से हम जानना चाहते हैं उनका प्रश्न।
ऐसा हम लोगों ने सुना है कि सारे कर्म जो भी आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं सब ऊपर से लिख के ही आता है, तो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है वो जब गलत कर रहा है तो भी भगवान का ही नियंत्रण है और जब सही कर रहा है तो भी भगवान का ही नियंत्रण है, तो मनुष्य के हाथ में है क्या? दूसरा प्रश्न है दीदी कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और जब आदमी बहुत परेशान होता है तो कैसे मतलब अपने आप को नॉर्मल रखे और खुश रखे ताकि तरक्की हो और शांति बनी रहे।
हम अच्छा कर रहे हैं भगवान कराता है, बुरा करते हैं भगवान कराता है, क्या ये आपकी दिल की आवाज है? बुरा काम भगवान कराएगा? नहीं कराएगा। वो सुख दाता है, दुख दाता नहीं है। अगर वो गलत काम कराता है तो दुख दे दाता है, दुख भी वही देता है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि तुम जैसे अच्छे से अच्छा काम करना चाहो करो, फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म करते समय तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कर्म करने में तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त है। पहली बात, ये बात आपको निश्चय कर लेना है कि भगवान किसी से कुछ भी नहीं कराता, अच्छा भी नहीं कराता, बुरा भी नहीं कराता। हमें आत्मा को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अपने अपने विवेक से मनुष्य कर्म करता है और अपने कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान पर कोई दोष नहीं है, किसी को बहुत धन दे दिया और कोई गरीब है, किसको भोजन के लिए नहीं है, ये सब मनुष्य के अपने ही कर्मों का परिणाम है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, वो तो पिता है, वो तो अपने सब बच्चों को राजा बेटा ही बनाना चाहता है, किसी को भी कम बनाना नहीं चाहता। इसलिए परमात्मा किसी भी व्यक्ति के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। उन्होंने नियम बना दिया सृष्टि का, जो करोगे वो भरोगे। कर्म करने के समय स्वतंत्र हो, फल भोगने के समय परतंत्र हो, भाग नहीं सकोगे। वो देखे या ना देखे कर्म का फल भोगना है। दूसरी बात आपने कही कि जो हम कर्म अच्छा या बुरा कर रहे हैं पूर्व निश्चित है, नहीं, जो हम कर रहे हैं वो कोई पूर्व निश्चित नहीं है। हमें विवेक प्राप्त है, हमें बुद्धि प्राप्त है, आपको अच्छे से अच्छा कर्म करने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं भी आप बंधे हुए नहीं है। आप बंधे हुए हैं फल भोगने में, कर्म करने में। कोई बना बनाया कर्म नहीं है कि आपके द्वारा अच्छा होगा, आपके द्वारा बुरा होगा, आप कहीं बंधे हुए नहीं है। इसीलिए लोग सत्संग करते हैं, अच्छा संग ढूंढते हैं, अच्छी बुद्धि अर्जित करते हैं ताकि हम अच्छे कर्म करें। जैसा संग वैसा रंग, कुसंग का असर होता है तो गलत काम करता है, अच्छा संग मिल जाता है तो अच्छे काम करता है। इसलिए कर्म का मैं जिम्मेवार हूं, मेरे कर्म का जिम्मेवार ईश्वर नहीं, मेरे कर्म का मैं जिम्मेवार हूं। कोई बने बनाए कर्म नहीं है जिसके आधार से मैं बंधा हुआ हूं करने के लिए, नहीं, मैं फल भोगने के लिए बंधा हुआ हूं, कर्म मेरे किए हुए हैं, ये मान करके चलना है। बाकी विपरीत परिस्थितियों में हमारी अपनी स्थिति अच्छी हो तो विपरीत परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती है, हमारी सोच श्रेष्ठ हो, हमारी सोच शुभ हो, तो जो परिस्थिति हमें कष्ट पहुंचाने आई है वो हमारे अनुकूल हो जाती है हमारे दृष्टिकोण से।
दीदी ने जिस तरह से मार्ग निर्देशित किया, हमारा अंधकार फटा और हम ज्योति की उपासना करते हुए अपने आप को सकारात्मकता के बीच महसूस करते हुए अपने जीवन को भी धन्य करने की दिशा में आध्यात्मिकता के साथ निश्चित रूप से बढ़े। इन्हीं संकल्पों के साथ जहां जिस क्षेत्र में हम हैं, जो भी हम कार्य व्यापार करते हैं, उसमें हमें सुख शांति और सुख शांति के साथ ही साथ आनंद महसूस करने की क्षमता को भी विकसित करनी पड़ेगी। और इसी मार्गदर्शन के साथ दीदी आपने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आपने जिस तरह से अपनी समस्याएं रखी और उनका समाधान मिला, आप लोग आए मार्गदर्शन में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति।